गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया
इतना। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मनकूल है बनी इसराइल में एक आलिम लोगों का इज्तिमा किया करते, आलिम साहब, और बयान करते, इस औरतें भी उस इज्तिमा में जमा होती, तो पर्दे वर्दे का दायरा इज्तिमा होता होगा, तो वो मतलब इस तरह इज्तिमा फरमाते। उस आलिम का एक नौजवान बेटा था, उसने एक लड़की को ताड़ा, तो आलिम की नजर पड़ी कि मेरा बेटा बदनिगाही कर रहा है। वो लोग गौर करें कि उसका बेटा टीवी पर मजे ले लेकर डांस देख रहा होता है और उनके कोई मतलब एहसास नहीं होता, खुद भी मिलकर देखते हैं, वो लोग एहसास करें अभी जिंदा, मरने के बाद नहीं फंसना जाए। तो कभी कभी जिंदों को सजा मिलती है, फिर वो सबके लिए इबरत का सामान होता है। ये अल्लाह की रहमत है कि कभी कभी वो हमें इबरत के असबाब खुद मुहैया फरमा देता है कि आखिरत के अजाब से बंदा बचे और उसकी कोशिश करे। चुनाचे उस आलिम साहब ने देखा कि बेटा बदनिगाही कर रहा है, तो आलिम साहब ने वहीं से बेटे बेटे फरमाया कि बेटा सब्र कर, यानी बदनिगाही मत करो, तुम्हारा जी भले चाहता लेकिन तुम उसकी तरफ देखो मत, सब्र करो। ये कहते ही वो आलिम साहब जो थे मुंह के बल अपने तख्त से या स्टेज से गिर पड़े, जिससे बाद हड्डियां उनकी टूट गई, जो हड्डियों के टूट गए। उस वक्त के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त वही फरमाई कि फुला आलिम को खबर दे दो, उस मुबल्लिग के लिए वही फरमाई कि इस मुबल्लिग को, इस आलिम को खबर कर दो कि मैं उसकी नस्ल से कभी सिद्दीक पैदा नहीं करूं। क्या मेरे लिए सिर्फ इतना ही नाराज होना था कि वो बेटे को कह दे बेटे सब्र कर, मतलब ये कि अपने बेटे को सख्ती से उस बुरी हरकत से बाज क्यों नहीं रखा, तो अच्छी तरह क्यों नहीं समझाया। सिद्दीक ये वली से भी बुलंद रुतबा होता है, क्या हम भी अपनी औलाद को, अपने मातहतों को क्या अच्छी तरह समझाते हैं? हर किस ने, हालांकि कुरान वाज़े तौर पर इरशाद फरमा चुका, सूरह तहरीम पारा 28वां रुकू 16वां, या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अन्फुसकुम वअहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल्हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ शिदादुन ला يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي إيمان بالو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور اس پر کرے فرشتے مقرر ہیں، کسی کی سنتے ہی نہیں، جو اللہ نے حکم دیا بس خلاص اسی پر وہ عمل کرتے۔ اس آیت مقدسہ کو سن کر ہم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، حالانکہ حضرت سیدنا منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج کے دوران کوفے کی اسی گلی سے، اسی کام سے، وہاں قیام تھا، رات کے وقت نکلے تو ایک گھر سے مناجات کی آواز آ رہی تھی، رو رو کر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ جب وہ چپ ہوا تو حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت تلاوت کی، تو جب یہ آیت تلاوت کی تو گھر کے اندر سے ایک دم دھڑام سے گرنے کی آواز آئی، پھر خاموشی تاری ہو گئی۔ یہ چلے گئے، صبح وہیں سے نکلے تو لوگ جمع تھے، تعزیت کر رہے تھے، ایک بڑھیا پر نظر پڑی، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کے قاتل کو جزائے خیر نہ دے کہ میرا جوان بیٹا رات کو گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا، تو کسی نے ایسی آیت پڑھ دی جس میں جہنم کے عذاب کا ذکر تھا اور میرے بیٹے سے وہ برداشت نہ ہو سکا اور میرے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی دھڑام سے آواز آئی تھی گرنے کی، ہو نہ ہو میری وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے، لیکن کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ مرنے والا تو بڑا کامیاب ہو گیا، اس کا کیا نقصان؟ سبحان اللہ، قرآن سن کر اس نے دم توڑا، اللہ اکبر۔ تو واقعی کوئی تو قرآن سن کر دم توڑے اور کوئی گانے سنتے ہوئے دم توڑے۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر،
एक वो थे जो कुरान सुनकर दम तोड़ते थे, इश्क रसूल में दम तोड़ते थे, गुम्बद खजरा की झलक देखकर दम तोड़ते थे, महबूब के मजार पुरनवार का दीदार करके दम तोड़ते थे, इश्क रसूल में रो रो कर दम तोड़ते थे, और हाय अफसोस आज क्रिकेट के खिलाड़ी के आउट होने पर दम टूटते, एक नहीं ऐसे कई वाक्य दम टूट जाते, यानी जब ये उल्टे सीधे मैच होते ना तो चंदे तो इसमें जरूर मरते हैं, तकरीबन चंदे मरते हैं, किसी का हार्ट फेल होता है, कोई छत से गिर कर मरता है, कोई देखते देखते हंगामे होते हैं, उसमें मार कुटाई में कुछ लोग मरते हैं, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हिसाब किताब जरूर होता है इन हंगामों में। तो मेरे इस्लामी भाइयों, आखिर कब संभलोगे, कब तुम्हें एहसास पैदा होगा, अगर यही गफलत की जिंदगी रही तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बहरहाल अपनी औलाद को अगर नेकियों के रास्ते पर ना लगाया, गुनाहों से ना रोका, तो अभी अभी आपने कुरान सुना के कुरान का हुक्म है कि अपने आप को और अपने अहलो इयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो हर एक गौर करे कि बचाता है, बचाता है या मतलब खुद ही फंसाता है गुनाहों में। यहाँ तो ऐसा होता है खुद फंसाता है, बाप अगर नाजायज काम करता है तो बेटे को भी मजबूर करता है, मिलावट वाला माल बेचना है देखो डंडी मारकर गुजारा करना है, मजबूरी है, पेट नहीं भरता। कल तो तुम कह रहे थे कि अल्लाह रोजी का मालिक, समझाने की दर्ज कर रहा हूँ, कहते ना यार अल्लाह मालिक है रोजी, तो अल्लाह के हाथ में, तो कल तो तुम कह रहे थे कि रोजी का मालिक अल्लाह है, आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम कहते हो यार मजबूरी है, इसके बगैर कारोबार नहीं होता, झूठ बोले बगैर। ये दो रुखी पॉलिसी, दो शैतानी अंदाज, दो रंगी छोड़ एक रंगी इख्तियार। अगर तेरा ईमान है, यकीन महकम है, यकीन कामिल है कि अल्लाह रोजी का मालिक है, तो हराम रोजी का सहारा लेना छोड़ दे, खुदा की कसम वो मालिक है, है, है और रहे। अगर ईमान कामिल हो तो खुदा की कसम तो मसला नहीं, पेट भर जाए। आपको दो जान की फिक्र है यार, जवान बेटियां हो गई हैं और ये है और वो है, यार तुम्हें दो जान की फिक्र है और रब को दो जहान को पालने वाला है। सभी भाइयों, अगर अपने घर वालों को भी ना समझाया तो फंसोगे, जैसा कि हजरत फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, कयामत के दिन एक बंदा बारगाह खुदावंदी में पेश किया जाएगा, उसकी औलाद उसकी बीवी वगैरह घेर लेंगे, याद ना इसने हमें दीन के अहकाम नहीं सिखाए थे, हमें पर्दे की तलकीन नहीं की थी, हमें सच बोलने की तलकीन नहीं की थी, नमाजों का हुक्म नहीं दिया था, या अल्लाह ये हमको हराम रोजी खिलाता था, सूद पर काम करता था, रिश्वत का लेन देन करता था, रिश्वत लाला कर खिलाता था, बासी अशिया ताजी कहकर बेचता था, इसने म्यूजिक सेंटर खोल रखा था, तो ये फरियाद होगी कि इसने दीन के आकाम नहीं सिखाए और हराम रोजी खिलाता था। तो इन बाल बच्चों की फरियाद पर जिनके लिए लोग बोलते कि यार बच्चे गले पड़ गए, इनके लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो इन्हीं की फरियाद पर उसको पकड़ लिया जाएगा और फरिश्ते पकड़ लेंगे, खूब उसको मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, खाल उधड़ जाएगी। स्कूल लाइफ में जरा पहुंचे आप तसव्वुर में, तो डंडी जब उस्ताद मारता है दूसरी डंडी खाने की हिम्मत नहीं रहती, और अगर वो पीटना शुरू कर दे तो चीखे मार मार के बुरा हाल हो, तो फरिश्ते मारेंगे खाल उधड़ जाएगी। यहाँ तो मावरा है कि तेरी चमड़ी उतार दूंगा, लेकिन चमड़ी को उतारता ना, वहां तो वाकई चमड़ी उतर जाएगी, ना सिर्फ चमड़ी बल्कि इसमें उसका गोश्त भी झड़ जाएगा, इतना मारेंगे और हड्डियों का ढांचा रह जाएगा, मौत तो आएगी नहीं, मतलब दुनिया में किसी की चमड़ी पूरी उतार दी जाए तो जाहिर है कि वो तो सोच भी नहीं सकता कितनी तकलीफ होगी, और जिंदा रह भी नहीं सकता, मौत आ जाए तो गोश्त उधड़ जाए और हड्डियों में भी जान रहे तो कितना तकलीफ होती होगी। तो उस हड्डियों के ढांचे को पकड़ के अब मीजान में लाया जाएगा, इसकी नेकियां निकाली जाएंगी, पहाड़ के बराबर नेकियां निकलेंगी, तो नमाजी भी है, हाजी भी है, बहुत ज़कातें भी दी है उसने, बड़ी बड़ी नेकियां निकाली जाएंगी, तो फिर अहलो इयाल इसके पहुंच जाएंगे और उसकी सारी नेकियां वो ले लेंगे, फिर फरिश्ते उसको पकड़ लेंगे और वो हसरत से कहेगा हाय अफसोस, अब मेरे कंधों पर सिर्फ उन गुनाहों का बोझ रह गया जो मैंने तुम लोगों की खातिर किया था। अपने बाल बच्चों को कह रहा है कि तुम्हारी खातिर जो गुनाह किए थे वही मेरे कंधे पर रह गए, तो तुम्हारे लिए रिश्वत लाता था, मैंने तुम्हारे लिए सूद पर लोन लेकर मैंने कारोबार किया था, तुम्हारी खातिर मैं जुआ की स्कीमें चलाता था, मैं तो तुम्ही लोगों के लिए ये करता था, तुम्ही लोगों के लिए वो करता था, इन्हें तरह तरह के मतलब अब वो गुनाह मेरे कंधे पर रह गए कि जो मैंने तुम लोगों के लिए किए थे। फरिश्ते पकड़ कर ऐलान करेंगे कि ये वो बदनसीब है जो अपने बाल बच्चों की वजह से जहन्नम में जा रहा है।
ऐ मेरी बहनों सदा पर्दा करो, तुम गली ऊंचों में मत फिरती रहो, सुन्नतों से भाई रिश्ता जोड़ तू, नित नए फैशन से मुंह को मोड़ तू, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है,
تے بھی چھوڑ